किसी शायर ने कहा है कि अगर किसी ऐसी हस्ती का आपने नाम लेना हो जो मुजस्म परमार्थ का आदर्शिक जीवन है, परमार्थ का आदर्शिक जीवन है, उसका नाम लेने से पहले अपनी जबान को हजार बार गुलाब से धो लो। देखिए ताकत के मुतलक आपने बहुत कुछ पढ़ा लिखा, किताबों में, ग्रंथों में सुना, मगर उसकी कोई झलक आपके सामने नहीं आ सकती। जब किसी पहलवान की सूरत देखते हो तो वो झलके आने लगती है ताकत की, जिसमें वो ताकत जिसके मुतलक ग्रंथों पोथियों में जिक्र किया गया है, पढ़ने से उसका कोई फोटो कहो नक्शा कहो दिल में बैठ नहीं सकता है जब तक जिसने उस ताकत को अपने जिस्म में इजहार किया है, मुंजमद किया है, उसकी शक्ल देखने से उपदेश की जरूरत नहीं, सिर्फ देखने से झलके मिलते। तो ताकत का एक जो परमात्मा जिसको कहा जाता है, वो आदि पुरुष जिसको कहा गया है, वो एब्सोल्यूट स्टेट नेमलेस वन, निराला कहो वंडरलैंड कहो, जिसका कोई बयान किसी अक्षर में ना हुआ आज दिन तक न हो सकता है, या वो इंटू एक्सप्रेशन इजहार में आई ताकत, वो इजहार में आई ताकत सब इस कायनात को खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी आधार दे रही, उसी महान शक्ति कहो, ये सारा ही संसार आजकल तो साइंटिफिक दुनिया ने ये साबित कर दिया है ये एनर्जी का इजहार है। बस उस एनर्जी जो बैकग्राउंड है वो एक कॉन्शियस एनर्जी है, और वो कॉन्शियस एनर्जी जिस पोल पर इजहार कर रही है, जिसके मुतलक ग्रंथों पोथियों में हम पढ़ते रहते हैं, उसका बयान पढ़ने से नहीं समझ आएगा। एक आदमी है, उन्हें घंटा न कभी देखा कि जंगलों में रहता है, न घंटे की आवाज कभी सुनी है। अगर तुमको उनको कहो कि वह घंटा टन टन करता है, वो उस बेचारे को क्या मालूम उसे। अगर घंटा बजाओ तो फिर कहो ये घंटा जी किसको टन टन कहते हैं, तब तो समझ आ जाए। अरे वो उस महान शक्ति कहो जिसको महात्मा बुद्ध ने सेल्फ फाइंड्स रिफ्यूज इन द सेल्फ, हमारी सेल्फ जो है और सेल्फ में रिफ्यूज फाइंड करती है जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, अरे उस ओवर सेल्फ का किन लफ्जों में बयान हो सकता। तो मैंने अभी अर्ज किया था कि पहलवान की सूरत देखकर ही ताकत का कुछ जलवा हमें नजर आ सकता है। इसी तरह किसी ऐसी हस्ती जिसके अंदर वो ताकत इजहार कर चुकी है कॉन्शियस, उसके देखने से बेख्तियार झलके मिलने लगते, जो ग्रंथों पोथियों में पड़ा वो नजर आने लगता है। वो आदि शक्ति जो है वो जन्म मरण में नहीं, फना होने से रहते हैं, और ये चीज बदलती रहती है, फना नहीं होती। अगर फना होती भी है, पर्दों कोला जला लक्कड़ जली, वो शक्ल मालूम हो गई मगर किसी और फार्म में अपीयर होती है, वो हटे तो कोई और फार्म अख्तियार करती है, देयर नथिंग लॉस्ट इन नेचर। तो मेरे अर्ज करने का मतलब क्या था कि ऐसे महापुरुष जिनके अंदर वो आदि शक्ति का इजहार कॉन्शियस हुआ, और जिन्होंने उसके देखने ही से लोगों को उसका कुछ न कुछ झलक, कुछ न कुछ विश्वास, जैसे पहलवान को देखकर ताकत का बेख्याल विश्वास आने लगता है, कुछ जलवे उसके आने लगते हैं, इसी तरह ऐसे महापुरुष के जीवन को बयान करना किन लफ्जों से हो सकता। हमारे हजूर का जिसकी याद में आप सब बैठे हो, उनका नाम आपको पता है क्या है? सावन। सावन का मौसम आप देखते हो, बड़ी वर्षा होती है, नीची ऊंची घाटियां सब तरबतर हो जाती है, सब्जी नए सिरे से रंग खिलते खिलाते, वहां अच्छे बुरे साफ रोड सब साफ हो जाते, मगर बाहरी सावन में एक नुक्स रह जाता, जब बारिश बंद हो तो बहस होती है। ये एक ऐसी हस्ती, देखो कल से ही परसों तक तो बड़ी गर्मी थी, दिन तो आज आना था काली थी, जरा हवाएं ठंडी शुरू होने लगे, आसमान पर बदल आने लगे, ठंडी आवाज लगने चली लगी, जो उसके आने की निशानी। तो उनमें ये एक बढ़ाई थी कि तो उसमें बढ़ास नहीं होती, हमेशा तरी ही रहती है, ठंडक ही रहती है। ये तो ऐसे समय आने से क्या होता, देर से ठंडक मिलती। जिस चीज का सामने क्या ठंडक है ना, बारिशें जब होती हैं, ठंडी हवाएं चलती तो ठंडक महसूस होती है ना, इसी तरह वो ताकत जब जब दुनिया में इजहार करती है सब में, मगर गुप्त है। सब घट मेरे साइया सुनी से न को भले हरी, तिस घट के जहां घट प्रगट हो, जिस घट में बरकट हो गया उसके हम बलिहार जाते हैं, उनके पास हम क्यों जाते हैं, महाराज ये हम भी प्रगट को वो है हम में भी, मगर उसने उसका अनुभव किया है और दूसरों को उसके अनुभव कराने में मददगार वे आप कर सकता। तो गुरुवाणी में जिक्र आता है कि सावन आया हे सखी कंते चित करे, भाई सावन का समय आ गया है, अब क्या करो, अपने कंत का फिक्र करो, याद आने लगेगा, पहलवान की सूरत देख कर ताकत याद आने लगेगी, जलवा देने लगेगी, कुछ एहसास होने लगेगा, अरे भाई अनुभवी पुरुष जब आते कि प्रभु का अनुभूत जाग उठते। याद रखो स्वामी दयानंद जी सारी उम्र पंडित गुरुदत्त जी को इस बात का एहसास दिलाने का यत्न करते रहे कि परमात्मा है, कोई ताकत ऐसी है, मगर एहसास नहीं करा सके। बस जब अंत समय आया है उनके जीवन में जो ठंडक, हे प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, उस जलवे को देखकर वो कन्विंस हो गए, और वो जलवा जिसमें भी इजहार करे वो चीज है दूसरों को कन्विंस करने की। याद रखो ताकत का कभी इजहार नहीं, एहसास नहीं हो सकता जब तक किसी पहलवान को न देखे। अरे अभी उस ऊंची ताकत कहो, आदि शक्ति कहो, प्रभु कहो, परमात्मा कहो, ओवर सेल्फ कहो, उसका अनुभव कभी नहीं हो सकता जब तक जिसके अंतर वो कॉन्टेक्ट होकर इजहार कर रही उसकी शोभ न। एक महापुरुष आता उसके मंडल में एक चार्जिंग है, उसका जिक्र क्या हो सकता ये बता। तो ऐसे पुरुषों का बयान करने के लिए भी आप देखेंगे वो क्या बोलते हैं, जो वो अंतर से अपने आप जैसे में आ रहा कसम की वाणी तैसा करी ज्ञान मिला, जो अपने आप से नहीं बोलते मत जैसे वो आता वैसे ही कहते हैं, गुस्ते अल्लाह गर्त हजरत में अब्दुल्ला, उनका कहा हुआ प्रभु का कहा हुआ होता है, खाजारा शक्ल में वो इंसानी गले से उतरती चीज मालूम होती है, मगर वो जो बैकग्राउंड है ना, वो चीज इजहार करने वाली वो मन बुद्धि के आधार पर नहीं, बल्कि वो एज इट कम्स, समझे, जो आता है बयान करते चले जाते हैं, उसे जेब नगर के सोचे की जरूरत नहीं, जब पढ़ोगे बड़ा कंटेंट डाइट मजमून होगा। इसलिए अहमद ने कहा कि जो ख्याल बगैर सोचे समझे कि अपने आप चले आते दिराव उस पर। अब ऐसे पुरुषों की गति को कौन बयान करे, वलीदा वली ने शिरासत ऊँचों की सार जो आसमानों पर उड़ने वाले हैं जाने, सतगुर की सत गत सतगुर जन, जो उस लेवल में जा चुके मंदिरों के घाट के ऊपर अपने आप का अनुभव करके ओवर सेल्फ का माउथ पीस बन रहे हैं, अरे भैया ऐसे पुरुष ही उनका बयान करे तो कहे। हमारे हजूर थे जिनकी याद में आप सब बैठे हो, उन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती थे जिनका देखना हमें नसीब हुआ। आगे भी महापुरुष आते रहे, इसी चीज को पेश करते रहे समय और लिहाज के मुताबिक, जिस जिस लेवल के आदमी समझे उस लेवल से बयान करते रहे। कहते महात्मा बुद्ध के पास दो आदमी के, एक वो थे जो परमात्मा को मानते नहीं थे, एक वो थे जो मानते थे। अब महात्मा बुद्ध बड़ी ऊंची रसाई की हस्ती थी, मगर उन झमेलों में नहीं। उसने कहने लेखो भाई जो परमात्मा को मानते थे उनका तुम मानते हो ना? कहने के हाँ, वो नेक है, सबका हमदर्द है, रहम मुजस्म है, जस्ट है। कहने हाँ, फिर इसको धार दो। जो नहीं मानते थे उनका भाई प्रेम करना अच्छी बात है, दूसरे को दुख दर्द बांटे अच्छी बात है, किसी को दुख ना दो अच्छी बात है। कहने हाँ, एक अब तो मतलब क्या था? चीज तो वही थी, सेल्फ फाइंड रिफ्यूज इन सेल्फ। कोई सेल्फ है ना जैसे वो सेल्फ फाइंड रिफ्यूज करती है, उसका नाम कुछ रख लो। नामों के झगड़ों में दुनिया जा रहे हैं। तो मैं ये पेश क्यों कर रहा हूं कि उस महापुरुष को बयान करना इंसानी लेवल से ऊंचा। तू सुल्तान कहां मियां तेरी कौन बढ़ाई, कि किसी कोई बादशाह हो उसको कह मियां जी आओ बैठो तो कोई तारीफ है उसकी? कहते हैं शहर में एक डिप्टी कमिश्नर चला गया, वहां पर पटवारी था गांव का। आपको पता गांव के लिए पटवारी बादशाह होता। जब पताल हो चुकी तो डिप्टी कमिश्नर साहब जाने लगे तो गांव वाले कहे साहब बहादुर हम दुआ करते हैं कि खुदा तुमको पटवारी बनाए। ये पता नहीं उसके दर्द कितने पटवारी दौड़ा करते। तो आप बात समझे कि वो संत महात्मा जो है ना परमार्थ के आदर्श जीवन इजहार की जगह दर बशर रूपोश कर आपता, वो रूहानी जलवा उनमें इजहार कर रहा है। उनको देश ना भी दो सन्मुख बैठो जलवा में बेत्या रूप प्रवाह करने लगेगी। उनका क्या बाहरी एहसास किया जीव तो बहुत ऊंचा, मैं इसको दो तीन टास्क में आपके सामने पेश करूंगा। आज तो फिर बाहरी थोड़ा सिलसिला होगा, कल से वो ये महात्मा होते क्या है, कल शाम वो तालीम क्या देते। थोड़ी थोड़ी टास्क समय अनुसार पेश की जाएगी। आज सिर्फ ये देखना है कि ये जो संत होते क्या, कैसे वो परमात्मा, नामों के झगड़े में न जाओ भाई, वो प्रेम है उनके अंदर। वो सब कायनात को एडिशन की जो पावर है ना, इसी से फिर सब कायनात जुड़ा पड़ा। वो ताकत हार जाए सब बिखर जाए, तो प्रेम ही सब संसार को लिए खड़ा। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। जो मोस्ट पीस बन गए उस आदि शक्ति के कहो, जो सबका जीवन आधार सब खंडो ब्रह्मों के लिए खड़ी शक्ति है, कुछ में पहला वश किया है सबसे प्यार। सुनिए मगर ऐसे पुरुष जब भी आते हैं सबक वही आज हमेशा चला है। सब महापुरुषों ने इसी बात पर जोर दिया है कि प्रेम बड़ी चीज, जहां प्रेम होगा सबसे प्यार होगा। किसी का बुराई का चितवन नहीं होगा, किसी के हाथ मारने का सवाल नहीं। जहां प्रेम होगा वहां बेखौफी होगी। उनकी सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो सबसे प्रेम करते हैं। सुबर भरे प्रेम रस रंग जे क्या साध के संग, वो प्रभु के प्रेम और विश्व के प्रेम के और उस नशे के ओवरफ्लोइंग प्याले होते हैं। उनको देखकर हमें भी चाहता कुछ और जीवन है भाई, वो जीवन की झलक मिलती है। और उनसे क्या मिलता है? महापितृ साध का संग जिस पेटत लगा हरिण, उस ऐसे साधु की बड़ी भारी पितृता क्या मिलता है उसे भेंट करने से, रिसेप्टिव होने से। वो नशा जिसको वो पा रहा है वो तुम्हें उसका अंश मिल जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है, लाइफ से लाइफ आती है। بدھی اور دلیل سے نہیں آئے گی, لائف سے لائف آئے گی. یاد رکھو, خوشبودار پھول ہو مٹی میں رکھ دو, مٹی خوشبودار. کپڑوں میں رکھو کپڑے خوشبودار, کمرے میں رکھو کمرہ مہک اٹھتا. ارے جس میں وہ جہک ہے بے اختیار اس کے رگ و ریشے میں وہی شعائیں نکلتے, اس منڈل میں وہ چار دن ہوتے. جن کی آنکھ کھلتی ہے یوگی کائی وہ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. ہمارے جو کیا فرمایا کرتے تھے کہ سب لوگ جب آتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے شیشے کی بوتل میں اچار ہے یا مربع, وہ دیکھ لیتے. مگر وہ پردہ پوش ہوتے ہیں, بچہ گندگی سے بھرا پڑا ہے تو ماں تو اس کو دھونے کی فکر نہیں ہوتی, کوئی دیکھ نہ لے. یہ ان کا خاصر. تو ایسے مہاپرش جب بھی آتے ہیں, کس زمانوں میں آتے ہیں, یہ کب سے تعلیم شروع, سب سے جب سے دنیا بنی سب مہاپرشوں نے ایک شکل یا دوسری شکل میں اسی بات کو پیش کیا ہے کہ وہ سب ہے. اس کا نام وہ سب میں جو ہے کچھ رکھ لو, کوئی ہے جیون آدھار کنٹرولنگ پاور جس کے آدھار نہیں ہے پیدا ہو تو جھگڑا پڑ جائے. میں امریکہ میں گیا, وہاں پر سائنٹسٹ مجھے ملے, پرمار کے مطلب بات ہو رہی تھی. سائنٹسٹ میٹر کو مانتے ہیں نا, اور کسی شکتی کو نہیں مانتے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کبھی ایٹم کو اینالائز کیا ہے؟ کہہ لگے ہاں. مگر اس میں آپ کو کیا ملا؟ کہہ لے وہ سب بڑی موومنٹ ہو رہی, حرکت ہو رہی. بھائی وہ حرکت ہے پہزلڈ ہے یا بڑی کنٹرولڈ اور ریزمک ہے؟ کہہ لے ویری مچ کنٹرول اینڈ ویری مچ ریزمک. مگر وہ کیا چیز ہے جو اس کو بھی کنٹرول میں رکھ رہے ہیں؟ برہمنڈ ہے, دیکھیے سیارے ہیں, ایسے ایسے سیارے ہیں جو پانچ پانچ ہزار سال میں ایک بار اپنے آربٹ پر چکر لگاتے نظر آئے. عقل بیفل ہوتی اس ساری چیز کو جو کنٹرول کر رہی طاقت ہے اسی کو نام دے. نانک نامے کے سب کچھ ہوا تھا. چلے پھر وہ کنٹرول ہے. اب تو ریسنٹلی چٹھی آئی تھی کہ اس موومنٹ میں ساؤنڈ پرنسپل بھی ہے, یہ بھی فائنڈ سائنس نے کر لیا. وہ ساؤنڈ پرنسپل کو شکتی کہتے, اکھنڈ کیرتن کہتے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ, یہ تعلیم پرمپرا سے چلی آئی, جتنا جتنا انوبھو کیا وہ بیان کرتے رہے, مگر ایک بات پر سب متفق ہیں, کیا؟ کہ اس کا انوبھو کب ہوا؟ جب باہر سے تم ہٹے. مہاتما بدھ نے کہا بی ڈیزائر لیس. دس گرو صاحب نے کیا, کامنا بہین ہو جا. کامنائیں باہر پھیلاؤ میں لے جاتی, باہر سے ہٹو انترمکھ ہو اس کے جلوا آنے لگا. انترمکھ ہونا کیسے ہے؟ یہ ایک سوال ہر ایک مہاپرش نے. یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے جو کانٹیکٹ دینے کی چیز ہے. ذکر تو ہوتا ہے مگر کیسے دیا جاتا ہے؟ تیرنا ایسے ہو سکتا ہے مگر تیرنے کے لیے کوئی سہارا چاہیے. تو یہاں پر دو قسم کے مہاتما ملیں گے آپ کو, ایک عالم ایک عامل. عالم بے عمل آپ کو کسی جگہ نہیں پہنچائے. وہ یہ کہے گا یہاں پر پانچ فٹ ڈوبی گہری زمین ہے, دریا کی طے ہے, وہاں پر تین فٹ ہے, وہاں سات فٹ ہے, وہاں یار ساری پانچ فٹ بنے تو بیس سے پار ہو جاؤ گے, جب جاؤ گے تو ڈوب. وہی میں کہتا ہوں, اربا جیو کا تیوہ سے ڈوبا کیوں. یہ ہے عالم کی بات. اور مہاپرش نے اس کے متعلق ذکر کیا ہے کیا, کہ جیسا گدا ہو اس پر چندن کا بہار لگا پڑا ہو اس کی خوشبو سے وہ بے خبر ہے, ایسے ہی عالم اور فاضل جس کو اس کا انوبھو عمل میں نہیں آیا اس کی یہی قیمت ہے. تو گرو امر داس جی نے اور خوبصورتی سے بیان کیا. وہ کہتے ہیں جیسے حلوہ ہو نا, اس میں کشتی صبح سے شام تک چلتی رہے اس کے سواد سے بے خبر ہے, ایسے ہی عالم اس انوبھو سے بے خبر. عالم بابل ہو کیا کہنا ہے, علم عامل کے گلے میں پھولوں کا ہار ہے, سمجھے. اور جو عامل نہیں اس کے پر گدے کا بوجھ. ہمارے لوگ یہی دو ہی سکتے تھے, عالم بھی تھے عامل بھی تھے. میں جیون پر آج نظر نہیں دے رہا, کل صبح عرض کیا جائے گا. عالم ہوتے ہی ساتھ عامل بھی تھے. ان کے اندر ایک بڑی بھاری فضیلت تھی کہ ہر ایک مذہب کی جو دھرم پر سکی تھے اس کا مطالعہ کرتے تھے. हम तो कहते हैं अपनी धर्म के बाद दूसरी की किताब नहीं पढ़ो, पाप हो जाएगा। अरे कई लोग होते हैं वो जला भी देते इतनी तंग नजरी और तंग दिली। तो जमाने के जैसे हालात होते हैं उस हालात के मुताबिक महापुरुष अपना काम करते हैं। ताकत तो वही लिए खड़े होते हैं, मत जैसी जितनी ताकत का जरूरत होते हैं वैसे बढ़ते हैं। गुरु नानक साहब आए, कबीर साहब आए, किस जमाने में जब हिंदू मुस्लिम आते बहुत ही कशीदा हालत थी, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। तो यहां तक जिक्र आता है कि जब इन्होंने उपदेश क्या दिया, बही ये सारे ही आत्मा दे रही है, राइट अंडरस्टैंडिंग दी, आत्मा चेतन स्वरूप है, इसकी जात वही है जो परमात्मा की जात है, इसलिए हिंदू मुसलमान सब है। उनको ले गए, काजी से पूछने लगे, पेश किया गया, अरे भाई तुम कौन हो? कह रहे महाराज हिंदू कहां से मारिए, अगर मैं हिंदू कहता हूं तो तुम मुझे मारने लग जाओगे, मुसलमान भी ना है, अगर तुम मैं कहूं कि मैं मुसलमान हूं तो जैसी मुसलमानी जिसको तुम समझ रहे हो ना जिसम की बनावट को, वैसा मुसलमान भी नहीं। कहते आखिर तुम हो कौन? कहते पांच तक का पुतला गैबी खेले, वहां वो ताकत है कि इसमें खेल रही है पूरी प्रिंसिपल जो वो मैं। चले अच्छा बहुत अच्छा, चलो नमाज पढ़ो, श्री वालों का यही है ना, चलो नमाज पढ़कर बहुत अच्छा जाए। वहां पर सब खड़े होंगे नमाज पढ़ने को, आगे मौलवी जी नमाज पढ़ा रहे थे, काजी साहब भी खड़े थे और भी गुरु नानक साहब भी खड़े थे। नमाज पढ़ेगी, गुरु नानक साहब ने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज खत्म होगी। चाहे काजी साहब देखा ये जबानी जमा खाई था, अगर ये मुसलमान सबको एक मानते तो नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तो उसने पूछा कि क्यों भाई आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? क्या ले मैं किसके साथ पढ़ता, किसके साथ पढ़ता? मौलवी जी पढ़ा रहे थे, जब मौलवी साहब तो घर के फिक्र में थे, उनके घर घोड़ी की बछेरी थी कि चूहे में न गिर जाए, नमाज जरूर पढ़ रहे थे फिर वो बाहर। अमीर आदमी को कादा लगा कर हमारे साथ पढ़ लेते, क्या तुम तो काबलों घोड़े खरीद रहे? यही कबीर साहब को मुश्किल पेश है, उन्होंने भी इसी बात को उपदेश दिया, क्या ना कोई हिंदू ना मुसलमान, हम दोनों देखे महापुरुषों का सही नजरी देते हैं। ये हिंदू मुसलमान यहूदी मुसलमान बौद्ध किसने बनाए? हम लोगों ने बनाया, जिनने बौद्ध को पा लिया वो बुद्ध बन गया, जो बुद्ध बनने के लिए स्कूल में दाखिल हुए बुद्ध को नहीं पाया वो भी बुद्ध कहलाए, या जो सिख बने, जो असल हकीकत है वो एक ही, उसको बुद्ध होना कहो, सच्चा सिख बनना कहो, सच्चा मुसलमान बनना कहो, उनकी तारीफ यही थी। सिख कौन है जिसके उसकी ज्योति का विकास हो, मुसलमान कौन है जो कोई टूर पर चढ़ के खुदा के नूर को देख, हिंदू कौन है जो उसकी ज्योति का विकास करता, ईसाई कौन है जो लाइट ऑफ गॉड को देखता, जो इन्हें के घाट से ऊपर जाकर उस आदि शक्ति के इजहार का अनुभव कर रहा है, उसका नाम सच्चा हिंदू, सच्चा मुसलमान, सच्चा ईसाई, सच्चा योगी, सब जब वो महात्मा चले जाते हैं। ये चीज है जगह बनी अधूरी नहीं कहे, एक ही गिराने में ये कैद रहे, जहां पर दीवा जलता है वहां पतंगे जाते हैं, वो जहां जाए जाड़ करते लोग इकट्ठे होते हैं, वो लाइफ टाइम में कोई समाज ना बनाते हैं ना तोड़ते हैं। पीछे जब वो चले जाते हैं जो लकीर के फकीर होते हैं वो उनको एक समाज के स्टेगनेशन करते हैं, उसे डिटीरियरेशन हो जाते हैं, मतलब बेसिक ग्राउंड सबके। तो उन्होंने उस जमाने में वो आए, आज हजूर जब आए, आज क्या हालत है भाई, एक एक मुसलमान है तो 72 फिरके हैं, हिंदू है तो अनगिनत उनकी शाखें हैं, और मजहब भी हर एक मजहब में कई तनकीरें बन गए हैं, मैं लकीर की फकीरी ज्यादा है, दी कास्ट ऑफ स्पिरिट वो बाहर मुखी साधनों ही में रह गए, इस वक्त ऐसी हस्ती की जरूरत थी कि फिर वो उसी चीज को ताजा करता जो बेसिक ग्राउंड थी। तो हजूर में यही था, उन्होंने क्या कहा मैं अर्ज करूंगा, उन्होंने कहा भाई देखो तुम हो कौन, हो इंसान के नहीं, इंसान किसको कहते हैं, इंसान वो है जिसके अंदर उल्फ हो, मोहब्बत हो, प्रेम का पुतला हो, उसके बर्ताव में, उसके ख्यालात में सब का भला चाहता। नानक नाम चढ़ी कला तेरे बहाने सरबत का भला, जिसके अंदर विश्व का प्रेम है, सब के लिए शुभ भावना है, उसका नाम इंसान है। तो कहते हैं ऐसे इंसान बनो, मगर इंसान बनकर क्या करो, क्या होगा? कुदरती बात, क्या तुम किसी को दुख दो? बिल्कुल नहीं। जिससे प्यार हो क्यों दुख दो? मैं तो मुझे जीवन में जिक्र आता है, एक शिकारी ने शिकार किया एक परिंदे का, वो टांग उसको जख्मी, वही मैं अर्ज करता हूँ, तो वो जख्मी हो गया परिंदा, तो महात्मा बुद्ध ने उसको उठा लिया बगल में, तो वो कहने लगे दूसरे चलेगी हमारा है, चलेगी मेरा, मुकदमा पेश हुआ थोड़े से दफ्तर में, तो फैसला किया भाई इसको छोड़ दो, जिसकी तरफ ये जाए उसी का, याद रखो परिंदों में भी कीड़ों मकौड़ों में भी मोहब्बत का इजहार है। मैं यहाँ का कोई ये अभी शेड नहीं बना था, यह छोटा था आड़ी खजूरों का बना हुआ शेड था, सत्संग हो रहा था, ऐसे बैठे थे, एक शाम का बच्चा आया शनि ऐसे खड़ा हुआ, सारे सत्संगी बैठे थे, तो कह रहे सांप आ गया, वो कोई डर नहीं, एक घंटा सवा घंटा सत्संग होता रहा, वो ऐसे खड़ा, जब सत्संग हुआ था चल पड़ा, कह रहे उससे मार, उस बेचारे ने तुमको कुछ नहीं, वो भी प्रेम की रावों को जानता। गुरु नानक साहब का जीवन था, धूप में लेते हैं दस के नीचे, छाया हट गया, चेहरे पर धूप आ गई, फनियर नाग ऐसे खड़ा धूप में, जिसके जिस्म से प्रेम की शुवाहें निकलती, अरे भाई सारी कायनात उसकी सेवा के लिए, उसकी बैकिंग कॉल पर है, जब वो था तो राय बुलार कहते हैं वहां से गुजर करो, हो गए तो मर गए, नजदीक है शाम किनारे हो गए, देखो तो जीकर, तो आप समझे, तो ये मोहब्बत की आई सब में जरे जरे में समा रहे, मगर उसका हमें कदर नहीं, इसीलिए कहा हू डू नॉट नो लव कैन नॉट नो गॉड, जो प्रेम नहीं जानते वो प्रभु को नहीं जानते। एक प्रेम की मोहब्बत दिल में बसाओ, घर में सुख, समाज में सुख, मुल्कों में सुख हो जाए। तो हजूर जब आए तो उन्होंने क्या पेश किया, दुनिया बहुत सारे हर एक अपने भी समाज की जकड़ में था, ये पहली बात, नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर यही था कि हर एक अपने अपनी समाज में था, मगर इस चीज को भूल रहे थे, भाई प्रेम मुजस्म बनो, प्रेमी क्या होगा, जो प्रेम करने वाला है आदि शक्ति या परमात्मा कहो, वो सब मैं सबका जीवन आ रहा है, उसका सबसे प्यार होगा कि नहीं, जो उससे प्रेम करने वाला है वो सबसे प्रेम करने वाला, वो विश्व से प्रेम करने वाला, और जिसका विश्व से प्रेम है, मिसाल सुनिए नामदेव थे, रोटी भुका रहे थे, कुत्ता आया कहते रोटी लेकर भाग गया, तो पीछे घी की कटोरी लेकर भागे, भगवान रुखी ने खाई, इसका नाम प्रेम। तो उन्होंने कहा भाई समाज सब अच्छी है, ये स्कूल और कॉलेज हैं हमने बनाए, इस हकीकत को पाने के लिए तुम हो सब आत्मा देहधारी, आत्मा और आत्मा में कोई फर्क नहीं, खाए वो चराचर में है, ये जंगम में है, ऐवानों में है, परिंदों में है, कीड़े मकौड़ों में है, या तुम में है, वो एक रस है, उसकी तरफ नजर मारो, तुम्हारी जात वही है जो इस सब का जीवन आधार, ये बात पेश की, और क्या कहा, अपनी अपनी समाज में रहो, इन झगड़ों में बहुत, आज क्या नतीजा हो रहा है, एक समाज का भाई दूसरी समाज में शक्ल नहीं देखना चाहता, ये तंग नजरी, ये कब से शुरू, ये आधार थोड़ी सी हकीकत की तरफ आंख खुलने का सवाल कब से शुरू हुआ, 1914 और 15 ईस्वी के दरमियान ये जागृति आई, संत महात्मा ने कहा दुनिया खाम खा जकड़ों में फंस रहे, वही मजहब वही समाज है जो हमको आजाद करने के लिए बनाई गई थी, वही हमारे पांव के जंजीर, हाथों की अटकड़ी और गले के ताक बन रहे। तो इस बात को जरूरत को देखकर हजूर ने ये सवाल पेश किया कि भाई तुम इंसान हो, इंसान बनो, किसी समाज में रहो, सब समाजें अच्छी हैं, सब समाजों में महापुरुष आए हैं, और सबकी तालीम क्या रही, ज़ोरास्टर को लीजिए। ज़ोरास्टर से पूछा कि भाई हम क्या करें, तो कहने लगे जॉइन द आर्मी ऑफ गॉड, परमात्मा की फौज में दाखिल हो जाओ। तो कहने लगे उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या हो, तो कहने लगे राइचियसनेस, पारसाई। पारसाई किसको कहते हैं? गुड वर्ड्स, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डी, सदाचारी जीवन। और इसीलिए मजहब तो आजादी के लिए बनाए गए थे, रहना जरूर किसी समाज में रहो, ये स्कूल और कॉलेज हैं जिसमें हम दाखिल हुए थे, इसमें रहकर हमने हकीकत को पाना था। हकीकत को पालने के लिए पहले अपने आप को पाना था, हु वी आर, व्हाट वी आर। इल्लत जुमला इल्म है, इल्लत तो ही सारे इल्मों की इल्लत राय क्या है कि हम जाने हम कौन, मन के हम दरिया, दरियाओं में दी मैं कौन, तुम कौन हो भाई? आत्मा देहधारी, सब चेतन स्वरूप आत्मा हो, देहधारी हो, समाज है, मैं दाखिल ही उसके लेबल लगाए बैठे। तो अनबल पुरुष के नजरिया क्या रहा? सदगुर ऐसा जानिए जो सबसे नए मिलाएगा। तो हमारे जरूर में जो बात पेश की, नीड ऑफ दियावर क्या था कि सब मिल बैठे। एक दफा आर्य समाज के भाई हमारे हजूर के पास गए, मैं पास खड़ा था, कह रहे महाराज आप ये जो चौथे पौड़े के लोग हैं ना हरिजन, इनको अपनी समाज में मिला लो। कह रहे हमारे सत्संग में तो सब मिले, जहां मर्जी बैठे, आगे बैठे, पास बैठे, कोई मना नहीं। कहते लंगर की भी चीज उड़ा दो। कह रहे भाई बात यह है, लोग हैं तंग नजरी में, एक ऊंची चीज को पाने के लिए छोटी चीज की जकड़ में रहकर उससे खाली रह जाए, इसलिए हमने ये रखा है एक जगह जो उससे नफरत करते हैं, एक जगह पकाकर अलग अलग खा लो। कह रहे कि आप कर रहे जब करेंगे हमारे भी आ जाए, सत्संग में तो सबको आजा दिया। यानी उनका नजरिया क्या था, किसी बंधन में आपको बंधना नहीं था। और बड़ी भारी जरूरत इस बात की थी, आपको पता है उन्होंने क्या कहा? ये रूहानी सत्संग शुरू कैसे हुआ, ये नवंबर 1947 की बात, उनको उन्होंने खास, असल बात ये जो हजूर से दूर रहे वो समझते रहे ये किसी मत के कैदी, जो नजदीक आए वो समझे ये आजाद पुरुष है। किसी को अपनी समाज भाई तोड़ने से क्या मिलेगा, माफ करना। वो क्या फरमाया करते थे, अरे भाई कुएं आगे बहुत लगे पड़े और नया कुआं लगाने की क्या जरूरत, आगे की कुएं माफ करना, ये कुएं बन रहे हैं माफ कर देना, गिरने के लिए, जकड़ में फंसने के लिए, बीच में गिरकर ना निकल सकने के लिए। उन्होंने कहा भाई रहो तो किसी समाज में, समाजों से हमारा कोई झगड़ा नहीं, बहुत ठीक है, सब समाजें अच्छी हैं, हर एक समाज में तालीम यही दी गई है, जो तालीम दी गई उसको ग्रहण करो। तो उन्होंने फरमाया था कि एक ऐसी कॉमन ग्राउंड बनाओ जिस पर सब समाजों के भाई एकत्र हो गए। ये कोई नई बात नहीं जो उन्होंने फरमाई, गुरु अर्जुन साहब ने इसी की बुनियाद रखी थी। उन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा काम कि सब महापुरुषों की वाणी जो उनको मिल सकी वो एकत्र कर दी। उसमें किस किस समाज के आदमी थे, महात्मा थे, मुसलमान भी थे फरीद साहब, जुलाहे भी थे कबीर साहब, छिपे भी थे नामदेव, सदरे जैसे कसाई भी थे माफ करना, सैले जैसे नाई के भी श्लोक थे, और फिर गुरु साहबान खत्री थे। तो मेरे यहां क्या किया कि सबको एकत्र कर दिया, एक बैंक टहाल स्पिरिचुअली कॉमन ग्राउंड खड़ी कर दी कि हमारे लिए जिन्होंने हकीकत को पाया है काबिले तालीम, वो तालीम सबकी एक ही पेज की। आजकल एक वर्ड या नाम पर एक किताब लिखी गई, आपको शायद नहीं दी गई अभी तक, उसमें हर एक समाज और हर एक महापुरुष की तालीम से इसी बात को कोटेशन दिए गए हैं कि बैकग्राउंड सबकी वही, सिर्फ जिन्होंने अनुभव किया उस बात को हम भूल रहे थे। तो उन्हें हुआ एक ऐसी कॉमन ग्राउंड रखो जिसमें सब समाजों के भाई इकट्ठे बैठ सके, अपनी अपनी समाज में रहे, अपने अपने बोले रखे, ना भेष बदले ना कुछ, रहो रहना, किसी समाज के लेबल तो लगाना ही है ना, नहीं तो एक नवा लेबल बनाओ और क्या, लेबलों में कुछ नहीं भाई, जिसका लेबल लगा उसकी शान को बरकरार रखो। और वो शान किस बात में है कि जो तालीम उन महापुरुषों ने दी उसको अपने जीवन में घटाओ। ये बात उन्होंने पेश की, इसलिए ये गुरु अर्जुन साहब ने उसे तालीम दी। उनसे पूछा गया कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, सब धर्मों में धर्म किसको, जो जिसका नतीजा सुख हो उसकी कसौटी क्या है, दूसरों से ऐसा सलूक करो जैसा तुम चाहते लोग तुम्हारे साथ करें। बड़े मोती तारे कहते सारे धर्मों में सबसे श्रेष्ठ धर्म सुख देने वाला क्या है, हर को नाम जप निर्मल कर। उन्हें कहा प्रभु की फौज में दाखिल हो जाओ और राइचियस बनो। इन्होंने कहा सबसे धर्म यह है कि उस आदि शक्ति जो उसके पुजारी बनो, उसके कांटेक्ट में अपनी आत्मा जो उसके ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ है उससे जुड़ो और नए कर्म करो। आपको पता है क्राइस्ट ने क्या कहा इस बारे में, किसी महापुरुष का जीवन लो, बात वही पेश करते हो। पेश करके क्या कहा उनको, एक दफा कहा गया कि भाई देखो यहां का बादशाह है सीजर, हमसे खराज मांगता है, बताओ हम क्या। वो बड़ी चालाकी से उनको गिरफ्तार करना चाहते थे। उन्होंने कहा अच्छा भाई उसका सिक्का ले आओ, कायम जो सुकत पर चलता था ले आओ। ले आए तो उस पर बादशाह की मोहर थी, तो कहने गिव वन टू सीजर दैट आर सीजर, जिस पर सीजर बादशाह की मोहर है वो उसके हवाले करो और तुम्हारी आत्मा पर मेरी मोहर उसके हवाले। इसी तरह महापुरुष जात आए, हजूर ने कहा भाई अपनी अपनी समाजों के लेबल लगाए बैठे हो, बैठे रहो वही, ना छेड़ो ना तो तालीम, उसमें वही बेसिक ग्राउंड है, हमने उसी चीज को पाना। तो ये सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया ये पेश किया, एक कॉमन ग्राउंड जिसका नाम रूहानी सत्संग भी उन्होंने खुद तजवीज किया था, मेरा तजवीज करना था, उन्हीं की बरकत है। देखिए सब भाई आते, मैं भी सब जगह जाता हूँ, अब वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुई इधर से रात तो नहीं पहुंचे थे, कलकत्ते में हुई, वहां मैंने उनको ये कहा एक दिन वहां पर रेजोल्यूशन पास हो रहा, हरे ख्याल के आदमी होते हैं कह रहे कोई परमात्मा का नाम मत रखो रेजोल्यूशन में, ये वो बहुत सारा, मैं बीमार था ना गया। उस दिन शाम को सुशील मुनि जी आया, कह रहे भाई आज बड़ी कश्मकश रही इसी लफ्ज पर कि वो कहते हैं परमात्मा का नाम नहीं होना चाहिए, कल आप चलो, खैर मैं बीमार था चला गया। मैंने एक टॉक दी इसी तरह जो पेश की गई, तो उसके बाद वहां पर अपने स्वामी सत्यानंद जी थे वो थे, मैंने उनको बुलाया भाई देखो महात्मा बुद्ध जी ने ये कहा है कि सेल्फ फाइंड सेल्फ, कहने कि हाँ भाई आप ही हमको फिर जाको। बात तो वही सिर्फ एक पहले स्टडी ऑफ रिलीजन ना होने करके ये तंग नजरी पैदा हो रही, जब आमिर बन जाए तो क्या कर फिर तो जगह ही कोई। तो हमारे रूप में यही मैं कर दिया था, ये तजवीज पेश की। अब उनके जीवन से, अब उनका जीवन क्या था, ये महात्मा क्या होते, ये तो कर शुरू करा मजनू, वो क्या तालीम देते थे, कौन सा योग कौन सा तरीका अख्तियार किया जो सब कोई उस पर अमल करके फायदा उठा सकते हैं, बिला इंसाज मजमू मिलत के वो कल शाम का मजमून होगा। तो इस वक्त सर यही है कि जिस महापुरुष की याद में तुम बैठे हो उसकी सच्चे मानों में याद इसमें है कि जो तालीम उसने दी उसको अपने जीवन में धारण, जो नमूना जिंदगी का उन्होंने पेश किया लोगों को वैसा जीवन खुद बनाना है। देखो यहां पर एक बात मोटी से, हम चाहते हैं जो आदि शक्ति जिसको परमात्मा कहो कुछ कहो, अगर हम किसी से प्यार करना चाहते हैं उसके मंजूर नजर होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, बड़ी मोटी बात कि जो गुण उसमें है वो तुम धारण करने लग जाओ। फर्ज करो आप एक आदमी को खुशखत्ती बड़ी अच्छी पसंद है, अर्जियां भेज दी आपने, वो कौन सी चलेगा जो खुशखत होगी लिखी फॉर एक्ट्रैक्ट करे। तो अगर हम उस हकीकत को पाना चाहते जो गुण उसमें अपने आप में धारण करो, अब उन गुणों का आपको पता कैसे लगे कि कौन से गुण उस हकीकत में, इसके लिए गुरु साहब ने बयान किया हर के गुण हर पावने हरि किन हरि को भाते हैं सो गुरु के पास, गुरु उनका मुजस्म है, जन मैंने अभी किया था, आदर्श जीवन का वो एक प्रोटोटाइप है, नमूना है, उसमें इजहार कर रहा हूं। जो अनबय पुरुष है उसमें वही गुण होते हैं जो हरि में, वो परिपूर्ण आदि शक्ति में। उसमें क्या गुण है भाई? सबसे प्यार करता है, सूर्य चढ़ता है सबको रोशनी देता है कि नहीं, जो उसको गालियां निकाले उसको भी, जो ना निकाले उसको भी। अरे वो आदि शक्ति जो सबका जीवन आधार है, जो उसको गालियां निकाले, निंदा करे या उसकी तारीफ करे, दोनों को किसी को दुख देता, वो तो प्यार मुजस्म है हकीकत। इस बात के गुण कहां से, वो क्या है? सबसे प्यार करता, वो सबका जीवन आधार है, समझे? तो ये गुण तुम धारण करना। अगर हम चाहते हैं उस आदि शक्ति के अनुभव करने के नजदीक हो तो यही गुण धारण करोगे तो लाइक को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए महापुरुष ज्यादातर इन झगड़ों में नहीं जाते कि परमात्मा है या नहीं, वो कहते तुम क्या बने हो। लोगों से पूछो परमात्मा है, लोग क्या कहते हैं? वेद भगवान ये कहता है, फलाना महात्मा ये कहता है, फलाना ग्रंथ ये कहता है। अरे भाई तू बता क्या कहता, व्हाट आर यू टू से ऑन दिस सब्जेक्ट, वहां से नीचे। अरे जिसने देखा उसकी जबान में एक कैफियत, उसके मंडल में एक चार दिन है, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट मैन स्पीक। तो हमारे हृदय में ये गुण था सबको मिलाकर बैठने का। एक बार जब वो आगरे से आए, उनका कायदा था मुसलमान फकीरों से मिलते थे, हर एक से मिलते थे, बस जब सब एक ही के पुजारी है तो झगड़ा का है। सभी कहते हैं नेक पाक सदाचारी बनो, उसके पाने का ये पहला जीना है, एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, उसको यम नेम के आसन कहो या एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा कहो या सर्वनांदी माउंट कहो, चार व्रत जो जैनियों के हैं वो कहो, बात है कि नेक पाक और सदाचारी बनो पहला कदम। दूसरा अपने आप को जानो और अपने जीवन आधार को जानो, अपने आप में असल बात तो यही है, बेसिक ग्राउंड जो सब महापुरुष पेश करते रहे। जब वो चले गए हकीकत शिनाश, फिर भी नई शाखाएं कायम नहीं की, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गए, एक 10-20 इधर इकट्ठे हो गए, 50 इधर दो शाखाएं बन। तो वहां जब वापस आए तो उन्होंने क्या किया, वहां कुछ आदमियों ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि जब भी सत्संग हो पहले भी जो मेहनती है पड़ी जाए, जब सत्संग खत्म हो उसको कुछ भी पड़ी जाए। दो चार दिन महापुरुषों को तो सब प्यारे हैं, किसी महापुरुष की मानी। दो चार दिन के बाद कहने लगे भाई अगर तुम इसको एक शरीयत बनाना चाहते हो तब तो मुझे हिंदू की शरीयत भी चाहिए, वहां आरती रखे, मुसलमान भाइयों की अपनी रखे, सिख भाइयों की अरदास भी रखे। मैंने तो शरीयत को टच नहीं किया, शरीयत में रहना एक बरकत है, जरूर रहो, नहीं रहोगे तो करप्शन हो जाएगी, मैं रह कर उस हकीकत को पाओ जिसके लिए तुम दाखिल हुए हो। इंसान हो, हिंदू बनो, सिख बनो, ईसाई बनो, बौद्धी बनो, जैनी बनो, कोई बनो, मगर तुम हो आत्मा की जात को पहचानो और अपने जीवन आधार को जानो, उसके लिए तुमको सदाचारी नेक पाक होना पड़ा। ये थी नीड ऑफ द आवर। जो हजूर ने इस बात को प्रचल किया, यहां देखेंगे किसी समाज का टिंग नहीं मिले, बाहर नीचे जमीन और ऊपर आसमान, कौन सी हालत होगा जहां पर वो शक्ति नहीं था। तो ये था आदर्श जो उन्होंने पेश किया। तो मैंने अभी अर्थ किए थे कि वो गुणों की झलक कहां मिलती है, जिसके अंतर वो ताकत इजहार कर रही है, उसका नाम कुछ रखो। संतों ने तारीफ की है, हमरो पत्ता बड़ो विवेकी आपे संत कहावे, हमारा भत्ता बड़ा विवेकवान है, जब वो ताकत उसमें इजहार करती है तो उसको संत कहते हैं। संत वही है जो माउथ पीस बन गया उसे क्रिकेट। तो हजूर एक मुजस्म जिंदगी में रहे, अपने जामे में रहे जरूर, और दूसरों को कहा अपने जामे में रहो। एक दफा का बात क्या है कि उनके यहां एक मुसलमान भाई, तो ये नई बात नहीं, मैं फिर अर्ज कर दू, दसों गुरु साहब के वक्त भी यही बात पेश की गई थी, पूछा कि भाई सिख कौन है, तारीफ कर दो। तो कहने लगे सिख तो भाई मुझे सारा जहान ही सिख नजर आता। पूछने लगे महाराज वो कैसे, कहले पैदा होने से मरने तक बच्चा जब बड़ा होता है सिख ही धारण करता रहता है, जो शिक्षा धारण करे उसका नाम सिख। कितनी विशाल तारीफ, मगर उसे गुरसुख बनना चाहिए, किसी अनभाई पुरुष के चरणों में बैठकर उस हकीकत की तरफ चलने वाला बनना चाहिए। यहां समाजों का झगड़ा कहां रहेगा आप बताए? नबी खान गनी खान मुसलमान रहते हुए कितनी कुर्बानी की। भाई नंदलाल साहब सारी उम्र भाई नंदलाल रहे, उन्होंने जो बंदगी नामा लिखा उसको कहा ये जिंदगी नामा, कर देखा है कि भाई नंदलाल को गुरुपद दी। तो मेरे अर्थ करने का आप समझे, तो हजूर के वक्त एक मुसलमान भाई का लड़का जवान गुजर गया, वो कह रहे मैंने इसको जलाना है। क्या तक ना भाई, तुम्हारी शरीयत में जलाना नहीं लिखा, दबाना लिखा, साथ जाकर दबा। आप समझे? तो आन भाई पुष्क की नजर साहब को एक रस देखती, आपके लेवलों की तरफ से नहीं देखती, आपके आत्मा के लेवल से देखती। ये बात की बड़ी भारी दिशा, और किसी अनभवी पुरुष की पास जाने के परखने की पहली निशानी क्या है? वो तुमको ये नहीं कहता कि कहाँ जाओ तो कहाँ ना, वो कहते ये सच है इसके मुतलाशी हो, हमें ऐसे मिला तुम भी तलाश करो, अगर इससे ज्यादा अच्छी चीज मिले हजूर फरमाते थे अरे भाई तुम भी लो और मुझे भी कहना मैं भी जाऊँ। अरे भाई हम सब सच के मुतलाशी, सच के मुतलाशी जो रहे सब एक रोना रोते रहे, माफ करना एक ही बात पेश करते रहे अपने अपने जमाने में, जितना जितना अनुभव किया उतना उतना पेश कर रहे। तो साथ जाकर उसको दबवा करा, तो किसी की शरीयत में उन्होंने दखल गई, गिवन टू सीजर्स व्हाट आर सीजर्स। तो अनभवी पुरुष की ये निशानी है, और मौजूदा जमाने में इसी बात की बड़ी भारी जरूरत है। यही एक हल है कि मिल बैठने का सवाल है। वर्ल्ड विजन कॉन्फ्रेंस में खैर पहले भी गया था, 1956 की बात आपको मालूम है, अब भी मैं गया था, बात यही पेश की गई, अपनी टास्क मैंने जो दी यही पेश की गई। और फिर मैंने कहा भाई दो साल तो मेरे हो गए, अब किसी और को चुनो। चले ये तुम्हारा काम नहीं, ये हमारा काम है। वहां उन्होंने सजेस्ट किया मेरा कि ये है, किसी को एतराज हो, इतने जैसे भी ज्यादा आदमी थे किसी ने हाथ नहीं उठाया। अच्छा जिन्होंने खिलाफ क्या ना वो हाथ खोलो, कोई चले आप बताओ आप कहो। तो मेरे ये नजरिया महापुरुष हमेशा हम ये सूजत कहां से आई, हजूर के चरणों में बात इस बात की समझ आई जो पेश की जा रही। तो ये बड़ी बारी नीड ऑफ दी आवर थी। अब किसी महापुरुष के फिर जीवन से हम क्या सबक ले सकते हैं? हजूर के जीवन से तीन चार चीजें बहुत, परमार्थ को तभी किनारे रहने दो, मैं बाहर की बात कर रहा हूं। पहली बात, उनके जीवन में ब्रह्मचर्य की रक्षा थी। वो खुद आप बयान किया करते थे कि पहली उनकी शादी हुई, लड़की मुकलावे में गई, उस जमाने में मुकलावा दो दो साल नहीं आ रहा करते थे, आजकल थोड़ा शादी हुई तो चलो घरों घरों भाग जाओ, माता पिता को भी छोड़कर चले जाओ, नहीं आए तो उसी दौरान में वो लड़की मर गई। फिर दोबारा शादी होने तक 25 वर्ष की उम्र हो गई थी, फिर शादी हुई। उसके बाद उनका क्या जीवन रहा, यह आदर्श होता है देखने का। तो उन्होंने सारी उम्र में उनकी अपनी फैमिली 6 महीने उनके पास रही, सारी उम्र में 6 महीने अभी गुजरे पीछे उनके जीवन में, तो साल 2-4 साल पहले, हम 6 महीने कभी अलहदा नहीं रहे, उनके पास 6 महीने वो रहे नहीं। यानी ये बात क्या बतलाने के कि कितना ब्रह्मचर्य की रक्षा थी। बच्चे हुए दो, ठीक है 2-3 बच्चे हुए, मगर उनका जीवन वो नहीं होता महापुरुष का जो हमने बना रखा। गृहस्थ आश्रम में जो आए हैं उनका एक फर्ज बाल बच्चों का पैदा होने की, सब शास्त्र मर्यादा कहते हैं, मगर सारे फर्ज नहीं। जब एक आध बादशाह हो जाया करता लोग जंगलों की राह लेते थे, मनुष्य बड़े भागों से मिलता। अरे भाई इसमें सबसे बड़ा आदर्श हमारा क्या है कि मनुष्य अपने आप को जानकर अपनी हकीकत को पहचाने, उसका नाम पूछ रहा, सेल्फ को जानकर और सेल्फ को जानो। और ये केवल काम आप मनुष्य जीवन में ही कर सकते हो और किसी जीवन में नहीं। तो ये बड़े भागों से मिला है, पौड़ी छुड़की फिर हाथ नावे रजन हुआ है, जिन्होंने मनुष्य पाकर उस हकीकत को नहीं पाया है, अरे वो जीवन बर्बाद कर गए। और बनो किसी कॉलेज और किसी स्कूल से बनो, डिग्री वही मिलेगी, ये नहीं लिखा जाएगा एमए आर्या कॉलेज या एमए सिख कॉलेज, नहीं लिखा जाएगा ना मुस्लिम कॉलेज लिखा जाएगा, हमें ही होगा, तो हकीकत को पालो किसी समाज से आओ। अनवही पुरुषों का हमेशा यही नजरिया रहा। उनके जीवन से पहला सबक जो मैंने अर्ज किया था, हमने जो सीखना वो ब्रह्मचर्य की रक्षा है। अरे भाई, इस तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे। जिस मकान की बुनियादी बोधी है, वहां मकान क्या खड़ा हो। हमारी सेहत, हमारा दिल और दिमाग ब्रह्मचर्य पर ही निर्भर है। कहो अगर ये सही है तो सब कुछ सही है, अगर ये नहीं सही तो क्या है। आंख देखने से रह जाती है, सिर दर्द गाता है, बड़ी उम्र जा नहीं सकता, सत्यानाश हो जाता है। इसकी रक्षा से आयु लंबी होती है। किसी ताने की जरूरत नहीं आपको। ब्रह्मचर्य की रक्षा बड़ी भारी ताकत है। बयान किया है कि 40 कतरे घी के एक कतरा खून का बनता है। खून से आगे चर्बी, चर्बी से हड्डी, हड्डी से मिर्च, मिर्च से जो चीज बनती है, कितनी कीमती चीज। इसको बरतो सिर्फ जब औलाद की ख्वाहिशी शास्त्र मर्यादा कहती है। जब एक दो बाल बच्चे हो जाए तो फिर महापुरुष भी तो ग्रस्त, ज्यादातर महात्मा ग्रस्त आश्रम में आए हैं, दूसरे महात्मा आए हैं मरकम आए जरूर। और बाबा जयमल सिंह जी महाराज थे, वो ब्रह्मचारी से बालपन से लेकर अंतिम शादी नहीं की, उनके भाइयों ने की, उन्होंने नहीं। अरे भाई, शादी करना ना करने का सवाल नहीं, सवाल ब्रह्मचर्य की रक्षा है। जो ग्रस्त आश्रम में आके जिन्होंने इसको धारण किया और संयम से धारण किया शास्त्र मर्यादा के मुताबिक, तो मेरे लाइफ इज नो बार टू स्पिरिचुअलिटी। अगर संयम का जीवन हो तो दुनिया में रहती है, ग्रस्त आश्रम में रहती है, संयम का जीवन करके तुम अगर ब्रह्मचर्य की रक्षा रख रहे हो, तुम्हारा जीवन कुछ बनेगा। दिल भी सही, दिमाग भी सही। तो ये उनका जीवन था ब्रह्मचर्य की रक्षा का। दूसरा जो सबक हम उनके जीवन से लेते थे, वो हर एक मजहब के किताबों को, समाज को मुताला करते थे। दिन को 12 से 4 बजे उनका फ्री होता था। लोग कहते जी आराम करते, क्योंकि मुझे फ्री एक्सेस था उनके पास जाने का। जब जाना तो उन्होंने वो कभी मुसलमान भाइयों की, कभी किसी की, कभी किसी की किताबों का मुताला करते थे। ऐसी ऐसी धर्म पुस्तकें जो अभी तक प्रिंट में नहीं आई, उनको निकलवाया उन्होंने, इकट्ठा किया। तो पैरल स्टडी ऑफ रिलीजन, ये दूसरा सबक जो उन्होंने किया था। और इस बात की हमेशा वो फरमाया करते थे कि आसिन जब लाइब्रेरी बनेगी यूज इंचार्ज वाले ये फरमाया करते, तो ये इसको संभालना होगा। और तीसरा के वो कभी आइडल नहीं, मसरूफिया डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ। हम तो लेते आराम करते ना, वो लेते भी कुछ ना कुछ करते, चलते फिरते ऑलवेज बिजी। और फिर बड़ी भारी आधी रात में किसी ने आवाज दी ना 2-3 बजे, हाँ भाई, पाता है ना कि महात्मा जो होते हैं जागृत रहे ना सूते दी से। जब इन के घाट से आप ऊपर चले जाते हो, आपको नींद और भूख की जरूरत नहीं रहती, बड़ी ऊंची अवस्था। तो ये मोटी मोटी 2-3 चीजें जो मैंने आपके सामने रखी वक्त के लिहाज से, वो ये है कि किसी समाज में रहो, इस बात को याद रखो, सब समाज एक, सबका आदर्श एक ही, सब ने उस आदर्श के पाने के लिए हमें जो काम दिया, पहला जीना वो सदाचारी नेक पाक जीवन, नेक पाक जीवन बनाओ, सदाचारी जीवन बनाओ, किसी समाज का लेबल लगाओ। हकीकत शनास पुरुषों की सोबत में गुरुसिख बनो, तुम हकीकत को पा जाओगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये बात, और उनके जीवन से हमने जो सबक सीखना है, किसी महापुरुष की याद का मतलब यह है कि जो जीवन में उन्होंने धन भाई आज से आप पहले स्टडी ऑफ रिलीजन करो, आपको सब मत प्यारे हो जाएंगे। मुझे शुरू से पहले स्टडी ऑफ रिलीजन का शौक रहा है, एज ए स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि वही चीज हर एक महापुरुष ने बयान किया अपने तरीके से, अपनी जवाबदानी में। बस जैसा जैसा समा था अपरा विद्या के लिहाज से वो संयम रखे उन्होंने, मगर जो परा विद्या थी वो सबके एक रही। जितनी जितनी किसी को रसाई हुई उतना उतना पेश कर गए। दूसरा, एक ब्रह्मचर्य की रक्षा। भाई आज सब भाई बहने बैठे, होश में आओ, वो तेरे बाल बच्चे आपके, आपका जीवन संभलो, होश में आओ। होश होगी टिकाने तो तब कुछ कर भी सकोगे, सेहत भी अच्छी रहेगी, बैठ भी सकोगे, कुछ करना चाहोगे वो भी कर सकोगे। तो उस महापुरुष की याद में आज ही अपने जीवन को नेक पाक बनाना शुरू करो, आदर्श जीवन बनाओ, जो शास्त्र मर्यादा कहती है, ग्रस्त आशुम विषय विकारों की मशीन नहीं है, याद रखो। ये एक फर्ज बाल बच्चों का पैदा भी होना है, वो अदा करो, मगर सबसे बड़ा आदर्श हकीकत को पाना है, अपने आप को जानना। उसके लिए पहले स्टडी ऑफ रिलीजन्स करो। महापुरुष हमेशा हर जमाने में आते रहे, उनका जब मुताला करोगे, यहाँ पर आए थे अपने रघुचार्य जी, वो चारों वेदों के जानने वाले, तीन शास्त्रों के, 18 प्राणों के बड़े आलोक प्रिंसिपल हैं वहाँ महादक्षिण कॉलेज के, उसमें शास्त्री वगैरह लोग पढ़ाते हैं, वो प्रिंसिपल हैं। उनकी आयु 103 साल की है, 103 साल की। यहाँ पर आए, टास्क दी उन्होंने, और वेदों के मंत्र वही पेश कर जो हम साधारण महापुरुषों की वाणियों से पेश करते। अरे भाई, हकीकत जब एक है तो सब एक ही बयान करेंगे कि दो। अगर आज हमें समझ नहीं आ रही तो उसका कारण यह है कि हमें उस साइंस से वाकफियत नहीं, हम इल्मियत के घाट में उनको पेश करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल मजमून, एक लफ्ज के कई माने बनते हैं, इसी जगह पर जाते हैं। जिसे देखा वो तो एक ही बात कहेगा। कबीर साहब से सर्वाजीत पंडित से मिले तो उनको कहने लगे, भाई देखो पंडित जी, मेरा तेरा मनुआ कैसे हित हो ही रहे, मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। कि मैं आंखों से देखकर बयान कर रहा हूँ, तू कागजों का लिखा पढ़ा बयान कर रहा है। देखा बयान कुछ और होता है, कन्विक्शन के साथ होता है। अगर सात अमल हो, सात पैरल स्टडी ऑफ रिलीजन हो, तो सबसे प्यार जानो। ये दूसरा सबक था हमारे रूप में। वो ये नहीं कहते ये किताब पढ़ो और वो ना पढ़ो, कहते ये भी पढ़ो और वो भी पढ़ो। और हर एक समाज से महापुरुषों की कलाम पेश करते थे, और यही हदायत की थी कि ऐसी कॉमन ग्राउंड रखो जिससे सब समाजों के भाई इकट्ठे। वही जाना पड़ता, मैं गया पाकिस्तान में, वहां वो कहने लगे एक चीज मेरे सामने पेश की कि भाई आप तनाशक के मुतल्लिक क्या कहते हैं। आप थे भी नहीं। मैंने उनको कहा भाई कई महापुरुषों ने इसका जिक्र किया, कईयों ने नहीं भी किया। मैंने कहा इस बार भाई देखो, मैं आप पर एक सवाल करना चाहता हूँ, इसके बाद आगे और जवाब चरहा का हो। मगर मैं आपके पाकिस्तान में आया, आपके कानून के कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, सबसे प्यार है, किसी से झगड़ा नहीं, तो यहाँ आपके जेल खाने और पुलिस है कि नहीं? मैं क्या कहूँगा, मेरे लिए नहीं भाई। जिन्होंने बयान नहीं किया, उन्होंने जो मोमन बन गया, जो सदाचारी नेक पाक बन गया, उसके लिए कैरखाना किया, चुप कर गए। तो मेरी अर्ज करने का, फिर कुर्बानी का सवाल पेश किया उन्होंने। हजरत इब्राहिम ने कुर्बानी किया, तुम कुर्बानी को रोकते हो? मैंने कहा भाई ठीक, उनकी जीवन में आता है, उन्होंने पहले भेड़ पेश की, फिर ऊंट पेश किया, फिर फलाना किया, फलाने का नहीं भैया मंजूर नहीं, सबसे प्यारी चीज पेश का। उन्होंने फिर अपना बच्चा पेश किया, करामात हुई या किसी तरह वो बच गया। मैंने कहा तुम भी जो सबसे अजीब चीज है पेश करो, बड़ी खुशी, दो दो रुपए के बकरे लेकर कुर्बान कर देते हो। अरे भाई जिसका प्रभु से प्यार है उसका सबसे प्यार, विश्व से प्रेम, क्या चर से प्रेम, शाम पर इनसे भी प्रेम। प्रेम एक ऐसी ताकत है जो दुनिया को बांध रही, वो उसके तुम मुजस्म हो, मगर वो तुम्हारा प्रेम इंद्रियों के घाट से फैलाव में जाने के कारण बच गया, तुम निर्बल और कमजोर हो गए। अगर तुम उसको ये शुरू कर लो, बड़ी भारी ताकत है, सूर्य की रोशनी आपको जलाती नहीं, उसकी किरणें अगर कॉन्वेक्स लेंस से गुजारो तो आग लग जाती है दूसरी तरफ। अपनी सुत की बिखरी हुई जो है धारें, इनको एकत्र कर लो, तुम बड़ी भारी ताकत रखते हो जिन्हें उस मालिक की दाम। परमात्मा महान सुत है, उसने उससे क्रिएशन हुई, ये सब महापुरुष बयान करते हैं। एक इजहार से कुन फिजो कुन, एको कवाओ तिस्ते हो लख दरियाओ, एको गौ श्यामण, जब उसमें इतनी ताकत है, हम में भी वो ताकत है, मगर बट गई है, छोटे स्केल में है। अगर छोटे स्केल में भी इकट्ठी करें तो हम कुछ के कुछ बन जाते हैं। जिसे सोतवंत जो बन गया, वो इंसान बन गया, हम हैवान बन रहे। एक शायर ने कहा है, बिनगर दर है वहां कि सर सुए जमींदार, हैवान की तरफ नजर मार कर देखो कि उसका सिर प्रभु ने जमीन की तरफ बनाया है। अगर सारी उम्र वो खाने पीने और इसी में रहे तो कोई बात नहीं, कुदरत ने ऐसे बनाया। अरे तो आखिर आदमी सर्व बाला को, अरे तेरा सिर तो ऊंचा बनाया ऊपर से, इन लोगों के घाट को छोड़, देख तू कौन है और तेरा जीवन आधार कौन है। अरे भाई ये था हजूर का जीवन, जो बाहर छोड़े लफ्जों में पेश किया गया। कल सुनो कि ये महापुरुष क्या होते हैं, संतों की कहानी उनकी अपनी जबानी, वो अच्छी रहेगी ना। संतों की कहानी उनकी अपनी जबानी, अपने इशारे आप देते हैं, वो कौन होते हैं, किस हकीकत को पाया है। और कल शाम थोड़ा थोड़ा वक्त है ना, हर एक भाई को वक्त दिया जाता है कि उन्होंने कौन सी चीज पेश की जो परंपरा से चली आई है, सहज से सहजा, और हर एक इंसान बच्चा बूढ़ा जवान उससे फायदा उठा सकता है। दैट इज नेचुरल वे बैक टू गॉड, वो कल शाम का मजबूत होगा। इस वक्त एक दो भाई नजमों को पढ़ेंगे, हजूर की याद का बहाना है किसी सबब से, उसको कुछ और नशा पेश करोगे, थोड़ा थके तो नहीं देर किया। अच्छा आपको सुनो,
अश कर गुरु की दया की वो निराश ना तू कभी, आश कर गुरु की दया की वो निराश ना तू कभी, जो निराश हुआ समझ ले गुरु का दास ना तू कभी, जो निराश हुआ समझ ले गुरु का दास ना तू कभी, आस कर गुरु की दया की हो निराश ना तू कभी, जग के फंदों में पड़ा समझा नहीं उपदेश को, जग के फंदों में फंसा समझा नहीं उपदेश को, तज के पृथ्वी को चढ़ा प्यारे आकाश ना तू कभी, तज के पृथ्वी को चढ़ा प्यारे आकाश ना तू कभी, आस कर गुरु की दया की को निराश ना तू कभी, जो निराश हुआ समझ ले गुरु का दास ना तू अभी, माया छाया एक है दोनों में सार की गम कहां, माया छाया एक है दोनों में सार की गम कहां, ये समझ आ जाए होगा फिर उदास ना तू कभी, ये समझ आ जाए होगा फिर उदास ना तू कभी, आश कर गुरुदेव की हो निराश ना तू कभी, जो निराश हुआ समझ ले गुरु का दास ना तू अभी, कैसे अपने रूप की आती समझ प्यारे तुझे, कैसे अपने रूप की आती समझ प्यारे तुझे, आया वर्ष में पक्ष मास में प पास ना तू कभी आया, वर्ष में पक्ष मास में गुरु के पास ना तू कभी आस कर गुरुदेव की, हो निराश ना तू कभी, जो निराश हुआ समझ ले गुरु का दास ना तू अभी। नाम से मिटते हैं संकट, नाम गुरु का मंत्र है, नाम से मिटते हैं संकट, नाम गुरु का मंत्र है, नाम से काटा माया जाल फांसना तू कभी, नाम से काटा है माया जाल फांसना तू कभी, आशिकर गुर की दया की वो निराश ना तू कभी, जो निराश हुआ समझ ले गुरु का दास ना तू अभी। अब संभल जा नाम में, अब संभल जा नाम में विश्राम आठों याम ले, अब संभल जा नाम में विश्राम आठों याम ले, किया सतगुर नाम से दुख का नाश तू कभी, आश कर सतगुर दया की हो निराश ना तू कभी, जो निराश हुआ समझ ले गुरु का दास ना तू।
इकट्ठे होने की गर्ज क्या? अगर आप इसी तरह सत्संग में आते हो जैसे मंदिरों धर्मशालाओं में, और जगह जाकर हाथ लगाकर वापस ही आ जाना है या मत्था टेक के चला जाना है, तो फिर वही हाल है जो आगे होगा। सत्संग में आए हो सत के संग के पाने के लिए, सत के संग को पाने से पहले सत के संग को सभी
फूल डालियों उदों कुमलात ते जान वेलड़े जरा तू दस जामी दे पले मासूम पा दिते बेबड़ा हीला परवाह होके छड़ चले रूहा बिचारियां जान वे लड़े जरा भी सोचिया ना कौन पूछेगा ये कर्मा दिया मारियां कर दे बूहे बनेरे उदास जापन जी चौंदा छड कर बारियां नूं ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਇਸ਼ਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਪੰਦ ਬਿਖੜਾ ਰਾਣਾ ਸੁਜਦਾ ਏ ਉਤੋਂ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਛੱਡ ਮੰਜਧਾਰ ਗਏ ਓ ਦੂਜੇ ਛੱਲਾਂ ਤੇ ਕੁਮਰ ਘੇਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਵਾਟਾਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੀਤਮਾ ਆਣ ਕੇ ਪਾਰ ਲਾਮੀ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਦਮ ਮੇਰਾ ਆ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉੱਚਾ ਵਕਾਰ ਮੇਰਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸ਼ਾਨ ਮੇਰੀ ਵੈਰੀ ਅੱਜ ਹੋਏ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੜੇ ਜੋ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੇ ਜਹਾਨ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਬਰਾਨ ਮੇਰੀ ਤੇ ਟੋਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇਰੀ ਮਾਲਕ ਉਂਝ ਤੂੰ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾਸ ਮੂਰਖ ਜਾਣਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਸਾਰ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਗੁਫਤਾਰ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਕੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸਵਲੜੀ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਸਾਰ ਮੇਰੀ ਸੇ ਸਾਬਤੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਗਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਸਿਰ ਚੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਪੈਂਦਾ ਰਾਜੇ ਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੱਸੀ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਯੂਸਫ ਜੈਸੇ ਵੀ ਤੱਕੜੀ ਤੁਲ ਜਾਂਦੇ ਤਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਦਿਲ ਸੰਭਲਦਾ ਨੀ ਹਿੰਜੂ ਡੁੱਲਦਿਆਂ ਡੁੱਲਦਿਆਂ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀਮ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਾਹੀ ਪਰਦੇਸ ਗਇਓ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰੋਵਣਾ ਪਿਆ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਦਿਸੇ ਨਾ ਲਾਡ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਂਦਿਆਂ ਤੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੇੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡਾਮਾ ਡੋਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੂੰ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖ ਹੋਵੇ ਹੁਸਨ ਤੋਂ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਮੇਰੀ ਸੌਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੱਖ ਹੋਵੇ ਮਛਲੀ ਵਾਂਗ ਰਾਤ ਤੜਪਦੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀਨਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਮਾਹੀ ਮੇਰਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰ ਤੱਖ ਹੋਵੇ ਹੇ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਗਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜੋ ਸੱਚਾ ਗਮਖਾਰ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਦੇਣੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਫੜ ਪੱਲਾ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੀਏ ਕਿਉਂ ਕੱਚੇ ਕੜੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਜੇ ਪਾਰ ਹੋਵੇ ਖੇ ਖੁਦੀ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਰਜਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਸੂਏ ਸੁਰਮਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੜੇ ਲਾ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਦਾਲ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਜਾਣਦਾ ਪੀੜਾ ਪਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਵੇਲੜੇ ਬਹਿਲਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਤਰਸ ਆਵੇ ਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਾਈਆਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੂਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੱਗੇ ਰੋਗ ਨੇ ਅੱਜ ਰਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਥਰ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੇ ਮਾਂ ਬਾਦ ਸ਼ਾਇਆਂ ਨੂੰ ਡਾਲ ਡਾਡਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰੀ ਆਵੇ ਅੱਜ ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਛਾਇਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨੇਰ ਹੀ ਨੇਰ ਜਾਪੇ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਿਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਵਾ ਮੇਰੀ ਛੁਰੀਆਂ ਸੀਨੇ ਜੁਦਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਦਿਲਦਾਰ ਪਿਆਰ ਆਵੇ ਕੋਮਲ ਕਲੀਆਂ ਅੱਜ ਕਮਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲ ਦਰਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਗਿਓ ਅੱਜ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੂੰ